आज है 19 दिसंबर दिन सोमवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। 15 साल बाद भारत ने जीता जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का खिताब।
वैसे हमको इसी दिन के लिए इंतजार था, 18 दिसंबर के लिए। हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू लखनऊ।
भारत और भारतीय हॉकी के लिए क्या है इसके मायने। सीरिया के अलेप्पो से लोगों को बाहर निकालने वाली बसों पर हथियारबंद लोगों ने लगाई आग।
You would see the rapid procession of people who want to leave out with monitors on the buses.
पाकिस्तान के फिल्म वितरकों और सिनेमाघरों के मालिकों ने भारतीय फिल्मों पर से प्रतिबंध हटाने का किया फैसला। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत ने जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने बेल्जियम को 2-1 से मात दी। भारत ने दोनों गोल पहले हाफ में किए और आखिरी समय तक भारत 2-0 से आगे था, लेकिन बेल्जियम ने बिल्कुल आखिरी सेकंड में गोल दागकर जीत का अंतर 2-1 कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भारतीय जूनियर हॉकी टीम को जीत के लिए बधाई दी है। सीरिया के अलेप्पो में स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों को से लोगों को लेकर कई बसें और एम्बुलेंस रवाना कर दी गई हैं। इससे पहले सीरियाई सरकार के नियंत्रण वाले इलाकों से निकाले गए लोगों को ले जा रही बस को विद्रोहियों ने जला दिया था, जिसके बाद अलेप्पो से लोगों को हटाने का काम थम गया था। जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर कारक में बंदूकधारियों ने कई जगह गोलीबारी की है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है इनमें एक कनाडा का पर्यटक और 7 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इन हमलों में 27 लोग घायल हुए हैं। एक बयान में सुरक्षा बलों ने कहा है कि 4 बंदूकधारी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि इन लोगों के पास विस्फोटक हथियार और आत्मघाती बेल्ट भी थी। अज्ञात बंदूकधारियों ने कारक के प्राचीन किले क्रूसेडर्स कासल पर हमला किया था, जहां कुछ पर्यटक फंस गए थे। हालांकि अब इन पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सुरक्षा बलों ने कारक शहर की घेराबंदी भी हटा दी है। एक पर्यटक अविनाश वाले भी गोलीबारी के वक्त घटनास्थल के नजदीक थे, उन्होंने वहां का हाल बताया।
We started hearing a series of gunfight and gunshots going all around the place.
हमने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी, फिर हमें समझ में आया कि कुछ गलत हो रहा है। एक समूह में लोग जुटने लगे, हमें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना था। हमने किले में 3 या 4 जगह से गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी थी। ये थे जॉर्डन से अविनाश कवाले के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि पूर्वी हिस्से में रूस समर्थित उग्रवादियों ने 5 सैनिकों की हत्या कर दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सेना के प्रवक्ता ने कहा कि दोनेस्क के नजदीक देबाल सेव के पास हुए हमले में 6 सैनिक घायल हो गए हैं। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक विद्रोहियों ने सेना के ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद गोलीबारी हुई, जबकि रूस समर्थित विद्रोहियों का कहना है कि हमला पहले यूक्रेन की सेना ने किया था। यमन के दक्षिणी पोत शहर अदन में आत्मघाती हमले में कम से कम 48 सैनिकों की मौत हो गई है और 84 अन्य घायल हैं। ये हमला उस वक्त किया गया जब ये सैनिक अल सलवाबन सैनिक अड्डे के नजदीक वेतन लेने के लिए एक कतार में खड़े थे। अधिकारियों का कहना है कि आत्मघाती हमलावर इन सैनिकों की भीड़ में जाकर मिल गया था और फिर वहां धमाका किया। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने इस हमले की निंदा की और कहा कि इस्लामिक स्टेट की हार होगी।
I want to express our deepest condolences to all of the families and the loved ones of those who were killed.
John Kerry ने कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। राष्ट्रपति ओबामा कह चुके हैं कि दाएश और पूरे क्षेत्र और उसकी सुरक्षा के लिए दाएश के खतरे को हराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। हमें गर्व है कि दाएश को खत्म करने के लिए काम कर रहे गठबंधन का नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है और हम क्रमबद्ध तरीके से इलाकों को वापस लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये थे जॉन केरी के शब्द। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो बीबीसी हिंदी.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हॉकी से. जैसा कि आपने मुख्य समाचारों में हरिता कांडपाल से सुना, कल का दिन भारतीय हॉकी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है और इसकी वजह है जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का खिताब, जिसे भारतीय टीम 15 साल बाद जीतने में कामयाब हुई है. लखनऊ में खेले गए जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारत ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर भारतीय हॉकी प्रेमियों को अभिभूत कर दिया. एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्त.
Ladies and gentlemen, your champions of the Uttar Pradesh Hockey Junior World Cup men, Lucknow 2016, India.
साल 2001 में जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जीतने के 15 साल बाद एक बार फिर भारत ने अपनी बादशाहत साबित की और वो कल दूसरी बार जूनियर विश्व कप हॉकी चैंपियन बना. लखनऊ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए पुरुषों के जूनियर विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने कल यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक बेल्जियम को 2-1 से मात दी. भारत ने खेल की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की और इससे पहले के दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में बेल्जियम की टीम जम पाती, खेल के 8वें मिनट में ही भारत के गुरजंत सिंह ने बेल्जियम का तख्ता खड़खड़ाया और भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी. इसके बाद भी भारत के हमलों में कोई कमी नहीं आई और सिमरनजीत सिंह ने बेल्जियम की रक्षा पंक्ति को छकाते हुए गोल कर भारत को 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त दिला दी. मध्यांतर तक स्कोर यही रहा. मध्यांतर के समय गुरजंत सिंह ने कहा कि बचे हुए समय में भी टीम ऐसे ही खेलेगी.
बहुत फर्स्ट मिनट में हमें गोल मिला ये और ऐसी लीड मिलने के लिए टीम के लिए पॉजिटिव एनर्जी है और हम लोग ऐसे फिनिश करेंगे इस मैच को. अभी जो चल रहा है बहुत अच्छे चल रहा है गेम और सेकंड हाफ में भी ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे.
मध्यांतर के बाद भारत ने खेल को थोड़ा धीमा किया. बेल्जियम को काउंटर अटैक करने का मौका मिला लेकिन भारत की मुस्तैद रक्षा पंक्ति के सामने उसके खिलाड़ियों की एक न चली. अगर सच कहा जाए तो पूरे मैच में भारत ही छाया रहा. गुरजंत, मनदीप, सिमरनजीत, वरुण, अरमान कुरैशी और गोलकीपर विकास दहिया पूरे टूर्नामेंट में भारत की जीत के हीरो साबित हुए. आखिरी मिनट में बेल्जियम को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला लेकिन गोल होने के बावजूद बेल्जियम के खिलाड़ी आंसुओं के समुद्र में डूब गए. स्कोर 2-1 हुआ और नवाबों की नगरी लखनऊ में भारत के खिलाड़ी तब तक जूनियर विश्व हॉकी चैंपियन बन चुके थे. और जब टीम विश्व चैंपियन बने तो फिर कप्तान की खुशी का ठिकाना कैसे रहे. हरजीत सिंह बोले,
वैसे हमको इसी दिन के लिए इंतजार था, 18 दिसंबर के लिए. हम बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं. सबसे पहले थैंक यू लखनऊ, लव यू ऑल, थैंक यू.
इससे पहले भारत ने बड़ा उलटफेर करते हुए सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से ढेर किया. इतना ही नहीं, क्वार्टर फाइनल में भी भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया. लीग मुकाबलों में भारत ने कनाडा को 4-0 से, इंग्लैंड को 5-3 से और दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से मात दी थी. मैच समाप्त होने के बाद जीत में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले सिमरनजीत सिंह ने वो कहा जिसे सुनने के लिए भारत के हॉकी प्रेमी न जाने कब से तरस रहे थे.
सारी दुनिया को पता चल रहा है कि इंडियन हॉकी अब सही राह में आ रही है.
सारी दुनिया को पता चल गया है कि इंडियन हॉकी टीम सही राह पर आ रही है. ये थी आदेश कुमार की रिपोर्ट. भारत और भारतीय हॉकी के लिए जूनियर वर्ल्ड कप में इस जीत के क्या मायने हैं, समझने के लिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने ही 1980 के मॉस्को ओलंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य और कोच रहे MK कौशिक से बात की.
बहुत ही फर्स्ट क्लास जीत टीम की हुई है. जीत के साथ साथ जो प्रदर्शन किया है वो बहुत उम्दा है. बेल्जियम कहीं नजर नहीं आई. गेम पोजीशन, बॉल पोजीशन, टेक्टिकली डिफेंस में भी नंबर ऑफ डिफेंडर्स मोर, अटैकर में भी नंबर मोर और फिर शुरुआत से ही लीग गेम के लीड लेना और गेम को डोमिनेट करना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लड़कों ने दिखाया और बहुत बहुत शानदार गेम प्रदर्शन किया. मैं समझ सकता हूं कि जो प्रेशर फाइनल का होता है और वो भी अपने क्राउड के आगे, उसके बावजूद भी जिस तरह से टीम ने प्रदर्शन किया है बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन. उम्मीद है कि ये हमारी जीत जो है लंबे समय तक हमें याद दिलाती रहेगी और हम इस यहाँ से कामयाबी की तरफ ही बढ़ेंगे.
इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया और टाई ब्रेकर में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 4-2 से पराजित किया और अगर क्वार्टर फाइनल की बात की जाए तो स्पेन को भी वहां 2-1 से हराया था. क्या मूल मंत्र रहा इस टीम का पूरे टूर्नामेंट के दौरान?
शुरुआती तौर में थोड़ा ठीक नहीं था लेकिन लेटर पार्ट जो आज जो गेम प्रदर्शन किया है वो सबसे बेस्ट गेम किया है. सेमीफाइनल में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था और मेरे ख्याल से गेम की जो प्रोग्रेस थी, टीम की प्रोग्रेस थी, वो बहुत अच्छी हुई और टीम को बहुत ढंग से रखा गया, बहुत अच्छा इनका इन्होंने विजुअलाइजिंग किया, बहुत अच्छा अपोनेंट को स्टडी किया और टेक्टिकली हमने एंड स्किलफुली हम उनसे टीम से बेहतर प्रदर्शन कर सके, सभी टीमों के विरुद्ध जब हम खेले उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सके।
और इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम कभी भी एक दो खिलाड़ी पर डिपेंड होती हुई नजर नहीं आई, चाहे वो गुरचंट हो, मनदीप हो, सिमरनजीत सिंह, हरप्रीत। क्या आपको लगता है ये जो स्कोरिंग पावर है डिफरेंट प्लेयर्स की, ये भारतीय टीम की ताकत बनकर उभरी?
जब से रोलिंग सब्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है और जब से नो ऑफ रेट खत्म हुआ है तो पोजिशनल प्ले काफी हद तक न्यूट्रल होता जा रहा है कि डिफेंस में भी अगर पीछे भी आना पड़ता है तो मिडफील्डर्स को ऊपर जाना है, डिफेंडर्स को ऊपर जाना है, तो वो प्रदर्शन नजर आया। और सबसे अच्छा गोलकीपर का प्रदर्शन बहुत कॉन्फिडेंट था, दहिया का प्रदर्शन बहुत कॉन्फिडेंट था, ये बहुत बड़ा अच्छा साइन है हिंदुस्तान की फ्यूचर हॉकी के लिए। ओवरऑल जो यंगस्टर टीम ने प्रदर्शन किया है वो यंग बच्चे जब सीनियर टीम में आएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से मेच्योर होके उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का सीनियर में भी मौका मिलेगा, ऐसा मैं समझ सकता हूँ।
सीनियर टीम में आकर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, ये कहना है भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे एमके कौशिक का। और इस जीत को भारतीय अखबारों ने कितनी तरजीह दी है, हमारे साथ लाइव स्टूडियो में हरिता कांडपाल। हरिता
जी, अखबारों में आज सारे ही अखबारों के पहले पन्ने की मुख्य तस्वीर नज़र पड़ती है, तो युवा भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी जो जूनियर टीम के खिलाड़ी हैं हाथ में ट्रॉफी लिए जश्न मनाते हुए सारे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर बड़ी सी तस्वीर है और नवभारत टाइम्स ने जो है अपनी हेडलाइंस के साथ ही जो है हरजीत सिंह जो कप्तान हैं उनकी ट्रॉफी के साथ तस्वीर छापी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि एक नाकाम खिलाड़ी ने जूनियर खिलाड़ियों को कब तक पहुंचाया और वो है उनके कोच हरिंदर सिंह। 1998 में वो टीम से हटाए गए थे, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उनके मुताबिक जो अखबार लिखता है कि जो है मैं तो ओलंपिक्स में नहीं खेल पाऊंगा भारत के लिए, लेकिन मैं ओलंपिक में भेजने के लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करूंगा। और इसी पर नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि हरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने खिलाड़ियों से सिर्फ इतना ही कहा था कि मेडल जीतना है, रंग आप तय कर लो। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 15 साल बाद भारतीय जूनियर हॉकी टीम का वर्ल्ड कप चैंपियन बना, खिताबी मुकाबले में बेल्जियम को 2-1 से हराया, जर्मनी सबसे ज़्यादा 6 बार और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना सब 1-1 बार चैंपियन रहे हैं। और ये 15 साल बाद की खबर थी, तो खेलों की दुनिया से 30 साल बाद की एक खबर भी बिल्कुल बगल में छापी है। भारतीय बल्लेबाज 199 रन पर आउट हुए हैं लोकेश राहुल। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 30 साल बाद ये हुआ, इससे पहले जो है 30 साल पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन भी 199 पर आउट हो गए थे।
जी, आपके पास अन्य खबरों की समीक्षा के लिए फिर लौटेंगे हरिता। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। अब बात करते हैं सीरिया के शहर अलेप्पो की। सीरिया में हथियारबंद लोगों ने उन बसों को आग लगा दी है जो सरकारी नियंत्रण वाले इलाके से लोगों को निकालने के लिए थी। अब इस इलाके को विद्रोहियों ने घेर लिया है। इन लोगों को निकालने की योजना बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो से निकलने की कोशिश कर रहे हजारों लोग भी शामिल हैं। लेकिन इन बसों को आग लगाने के बाद ये प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन अब मेडिकल अधिकारियों का कहना है कि आम नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। पूरे ब्यौरे के साथ हरिता कांडपाल।
सीरिया के अलेप्पो में स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से करीब 350 लोगों को लेकर 50 बसें और एम्बुलेंस रवाना कर दी गई हैं। इससे पहले सीरिया में जारी संघर्ष के बीच इदलिब प्रांत से बीमार और घायलों को निकालने के लिए रवाना की गई कई बसों को रास्ते में ही विद्रोहियों ने जला दिया, जिसके बाद अलेप्पो से लोगों को हटाने का काम रुक गया था। सीरियन रिलीफ संस्था से जुड़े एक कार्यकर्ता मुनीर गाकिमी ने बीबीसी से कहा कि सीरिया में 5 साल से चल रहे युद्ध के दौरान लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था कैसे इस चुनौती का सामना कर रही है। पूर्वी अलेप्पो से निकाले गए लोग पश्चिमी अलेप्पो में ले जाए जाएंगे। इदलिब के पास घायलों और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया जाएगा। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें तुर्की भेजा जाएगा क्योंकि यहां उनके इलाज की सुविधा नहीं है। आम लोगों को कैंपों में ले जाया जाएगा। मुनीर काकिमी के शब्द। इस बीच पूर्वी अलेप्पो में स्थिति भयावह हो चुकी है। कड़ाके की ठंड में हजारों लोग सड़क पर रात गुजारने के लिए बेबस हैं। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। यूनिसेफ का कहना है कि स्थिति नहीं सुधरी तो ये लोग दम तोड़ देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पूर्वी अलेप्पो में अपनी और टीमें भेजने की तैयारी कर रहा है। इसी से जुड़े एक प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में वोटिंग होनी है। रूस ऐसे ही एक प्रस्ताव को शब्दावली को लेकर पहले ही वीटो कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत सामंथा पावर ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार प्रस्ताव को पूरा समर्थन मिलेगा।
If this were to actually work, which nothing in Syria, you know, really has for the civilians of Syria, so we all have to take this with a grain of salt.
सीरिया में लोगों को निकालने के लिए हम देखेंगे कि एक साथ बहुत सारे लोग निगरानी के तहत बसों में निकलना चाहते हैं। नाकों पर भी निगरानी हो और पश्चिमी अलेप्पो में प्रवेश बिंदु पर या फिर इदलिब जा रहे हैं तो वहाँ भी निगरानी हो। ये सब ICRC, सीरियन अरब रेड क्रेसेंट और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की मदद से हो सकता है। हमारे पास कई हफ्तों का समय नहीं है। लोग भूखे हैं, ठंड में कांप रहे हैं, कई लोगों के पास तो कुछ भी नहीं बचा है। इस प्रस्ताव पर कल ही वोटिंग होनी चाहिए और कल ही लागू होना चाहिए। सामंथा पावर के शब्द। इससे पहले आई रिपोर्टों के मुताबिक सीरियाई सुरक्षा बलों ने अलेप्पो में सभी मेडिकल सुविधाओं पर बमबारी की थी। खासकर सीमा से लगे हुए अस्पतालों की सुरक्षा की मांग की गई है। यहां आम नागरिक और हारे हुए विद्रोही फंसे हैं। ये सभी अपने ही घर में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। यूनिसेफ का कहना है कि बच्चों की हालत बहुत बुरी है। कुछ बच्चे तो अपने माता पिता के बिना ही जाने पर मजबूर हैं।
ये थी हरिता कांडपाल। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था के अनुसार भारत में करीब 10,000 रोहिंग्या मुसलमान रेफ्यूजी हैं, जबकि दिल्ली में इनकी संख्या 1,000 से ज़्यादा है। पिछले 4 वर्षों से बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन जारी है, जिनमें से अधिकतर ने बांग्लादेश की सीमा पार करने के बाद भारत का रुख कर शरण के लिए औपचारिक आवेदन कर रखा है। जातीय हिंसा का निशाना बने रोहिंग्या मुसलमान बर्मा के पश्चिमी इलाके रखाइन के से हैं, जहाँ इनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन बर्मा की सरकार ने कभी इन्हें अपना नागरिक नहीं माना है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव दिल्ली में एक रोहिंग्या मुस्लिम कैंप पहुंचे।
दोपहर के 11 बजे हैं। चारपाई पर 4 बच्चे कंचे खेलते हुए मुस्कुरा रहे हैं। बगल में जंग लगे हुए एक कूलर पर कबाड़ का ढेर है, जिस पर छोटी मछलियां सुखाई जा रही हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो भारत में ज्यादातर ने नहीं सुनी होगी। हम इस वक्त दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के एक रेफ्यूजी कैंप में हैं। यमुना नदी के तट पर ओखला इलाके में इस कैंप में करीब 50 परिवार रह रहे हैं। लगभग सभी ने बर्मा में पिछले कई वर्षों से जारी जातीय हिंसा में किसी न किसी अपने को खोया है। 23 वर्षीय अमीना जब 2012 में बर्मा में हिंसा से बचकर भागी थी, तब उनके पास सीमा पार करने तक के पैसे नहीं थे। अमीना ने बताया,
यार भाई हमारे के यार के
जब भागे तब ये बच्ची पेट में थी, जो अब 4 वर्ष की हो रही है, लेकिन इस बेचारी ने अपने पिता को नहीं देखा है। मेरे पति उसी हिंसा के बाद से लापता हैं। मुझे भाषा नहीं आती, काम नहीं मिलता, इसीलिए कबाड़ बटोरती हूँ।
इस समुदाय के लोगों के खिलाफ हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए कहा है कि ये दुनिया के सबसे प्रताड़ित लोगों में से एक हैं। दिल्ली में रह रहे सभी रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा में जारी हिंसा पर बेहद अफसोस है, लेकिन वे इस बात पर अड़े भी हैं कि गरीबी में ही सही वे भारत में ही बेहतर हैं। 60 वर्ष की जोहरा खातून एक मिट्टी की भट्टी पर खाना पकाते हुए अपनी तकलीफ बयां करती हैं।
बेटा भागते वक्त मारा गया और मेरे 3 साल के पोते के सिर में ट्यूमर है। 6 महीने तक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इसका इलाज कराया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
बर्मा में इन लोगों को न तो जमीन जायदाद खरीदने का हक है और न ही पढ़ने लिखने का। उनके आने जाने पर भी कई तरह की पाबंदियां हैं। दिल्ली की तरह भारत के कुछ दूसरे शहरों में भी रोहिंग्या मुसलमानों ने शरणार्थी के दर्जे की अर्जी दी है। इधर ओखला कैंप में ही रहने वाले अली जौहर 2012 में अपने परिवार के 5 और सदस्यों के साथ भारत भाग कर आए थे। अली अब दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले चुके हैं।
एक्चुअली यहाँ पे हमें लगता है कि सेक्युलरिज्म है, बर्मा में वो चीज़ नहीं है, इसलिए दंगा है। इंडिया में ये हम यहाँ पे आके वो चीज हमने नहीं देखा है। हमारा कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है मेजोरिटीली, लेकिन हमें हिंदू ब्रदर्स और सिस्टर्स से, यहाँ के जो लोकल हिंदू से, उनसे जितना सपोर्ट मिला उससे हम बहुत खुश हैं।
पिछले एक महीने से बर्मा के रखाइन प्रांत में हिंसा दोबारा भड़क उठी है और बर्मा की फौज ने ऑपरेशन बैकडोर चला रखा है। इस प्रांत से रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन आज भी जारी है और पड़ोसी बांग्लादेश के बाद इन्हें भारत से भी पूर्ण शरणार्थी दर्जे की खासी उम्मीद है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
और अब समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए फिर रुख करते हैं हरिता कांडपाल का। हरिता
जी, आज मणिपुर की खबर का जिक्र करती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मणिपुर के नागा बहुल उखरुल जिले में कल प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू तोड़कर कई गाड़ियों में आगजनी की है। दरअसल मणिपुर में 7 नए जिलों की घोषणा की गई है पिछले दिनों और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन है और आर्थिक नाकेबंदी का भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि मणिपुर के 2 जिलों में जो है हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है कि मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को हुए 3 धमाकों के बाद अफवाहों की रोकथाम के मकसद के कारण से यह फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई और इसके बाद इंटरनेट पर रोक की बात कही गई। इसके अलावा एक मलयालम लेखक पर जो है केस दर्ज किया गया है केरल में, इसकी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि मलयालम लेखक है और रंगकर्मी कमल सी चवारा है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में राष्ट्रगान के बारे में कुछ लिखा था और उन पर मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिता कांडपाल। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फिल्म वितरकों और सिनेमाघरों के मालिकों ने कहा है कि वे सोमवार से अपने यहाँ भारतीय फिल्मों को दिखाना दोबारा शुरू कर देंगे। पाकिस्तानी फिल्म वितरकों और सिनेमाघरों के मालिकों ने इस साल सितंबर में दोनों देशों के संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच अपने यहाँ भारतीय फिल्में ना दिखाने का फैसला किया था। पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्में खासी लोकप्रिय हैं और कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्मों का प्रदर्शन बंद करने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता रजा हमदानी से बात की।
जब इंडिया के जेरे इंतजाम कश्मीर में उड़ी पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, उसके बाद दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा कशीदगी हुई। पाकिस्तानी सिनेमा ओनर्स ने जो एक फैसला किया कि हम इंडियन फिल्में नहीं दिखाएंगे, अब ये फैसला किया गया है सिनेमा ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो फिल्में इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्टर, उनकी जानिब से कि हमने जो मैसेज देना था दे दिया है और वक्त आ गया है कि हम इंडियन फिल्म्स दोबारा दिखानी शुरू करें सिनेमा हाउसेस में अपने। उस हवाले से मैंने जब बात की फिल्म एग्जिबिटर्स के चेयरमैन लछारी साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि उनको बहुत नुकसान हुआ है। जितने भी सिनेमा हाउसेस थे उनमें बहुत सारे जो हैं बंद हो गए थे, वहाँ जो मुलाजमीन थे जो कि वर्कर्स थे उनको निकालना पड़ा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। पहले भी जब इन्होंने अनाउंस किया था कि जी हम सेल्फ इम्पोज बैन लगा रहे हैं इंडियन फिल्म से, तो उस पे एक्टर्स और जो नई फिल्मों के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने आके यही कहा था कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो सिनेमा हाउसेज हैं इधर जो नए आ रहे हैं और जिनका प्लान है कि हम लेटेस्ट सिनेमा हाउसेज खोलें, ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा।
हमदानी साहब, ये बताइए कि फिल्में तो पाकिस्तान में भी बनती होंगी, उर्दू में, पंजाबी में और भी कुछ जबानें होंगी, तो क्या वो इतनी कमाई नहीं कर पाती, उनका इतना चस्का नहीं लगा है, पाकिस्तानियों को इतना शौक नहीं है जितना हिंदी फिल्मों का है?
पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें फिल्में बनती थी, बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन कुछ अरसे से फिल्में बननी जो अच्छी बननी बंद हो गई और अब दोबारा उसका एक स्टार्ट हुआ है जब ये प्राइवेट टीवी चैनल्स जो हैं, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके बैनर के अंडर बननी शुरू हुई हैं और उसकी वजह से थोड़ा बेहतर हुई है फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन चाहे जितनी मर्जी अच्छी मूवीज बननी शुरू हो जाए, पाकिस्तान में इंडियन मूवीज की एक मार्केट है। अगर बहुत अच्छी मूवी है دیکھنا پسند کریں گے, جیسے میں اپنی فیملی کے ساتھ جا کے دیکھنا پسند کروں گا. لیکن اگر سینما ہاؤسز میں نہیں بھی جاتا تو میں سی ڈی ضرور خریدوں گا. انڈین موویز کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے.
کیوں ہے اتنا بڑا مارکیٹ؟ کیا پاکستان کی فلمیں وکلپ نہیں دے پاتی ہندی فلموں کی, وہ بھی تب جب بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤ چرم پر آتا جاتا رہتا ہے؟
دیکھیں, اب دیپکا ہوئی, کرینہ ہوئی, اس کا سبسٹیٹیوٹ تو پاکستان ابھی دینے میں کامیاب نہیں رہا, لیکن جو بھی ٹینشن ہے دونوں ملکوں کی وہ تو ایک جگہ, جو فنکار ہیں ایٹ لیسٹ پاکستان یہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو علیحدہ رکھا جائے اس دونوں ملکوں کی پالیٹکس سے. تو میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے پاکستانی سنیما ہاؤسز کی طرف سے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آئس بریکنگ. میری یہاں بھی بہت لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہ فلموں کے ساتھ اسی فیلڈ سے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک وہ سٹیپ ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ انڈیا بھی یہ سوچے کہ جو پاکستانی ایکٹر جیسے فواد خان ہیں, مائرہ ہیں, ان کو بھی دوبارہ اجازت دی جائے کہ وہ کام کر سکے انڈیا میں.
پاکستان کے فلم وترکوں اور سینما گھروں کے مالک دکھائیں گے بھارتی فلمیں. یہ تھے بی بی سی سنواددتا رضا حمدانی. ادھر وسط اللہ خان کا کہنا ہے کہ سورج ابھی چڑھا نہیں ہے اور کون جانے سورج چڑھتے چڑھتے پاکستان کے سینما گھروں میں ہندی فلموں پر پھر سنکٹ کے بادل چھا جائیں. ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں پاکستان سے وسط اللہ خان کی ساپتاہک ڈائری.
آج شام میں نواز الدین صدیقی کی فلم فریقی علی دیکھنے کراچی کے کسی سینما ہاؤس میں جاؤں گا, پر دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں سینما تک پہنچتے پہنچتے پالیسی نہ بدل جائے اور ٹکٹ والا بابو یہ نہ کہہ دے کہ ہاں آج شو تو ہونا تھا مگر ایک دم اوپر سے آرڈر آ گئے کہ شو کینسل کر دو. اڑی حملے کے بعد انڈین موشن پکچرز ایسوسی ایشن کی طرف سے پاکستانی آرٹسٹوں کو آئندہ بالی ووڈ کی فلموں میں نہ لینے کا جو فیصلہ کیا گیا, اس کے جواب میں پاکستانی سینما اونرز نے بھی 30 ستمبر سے بھارتی فلموں کا بائیک آؤٹ کر دیا. اس کے بعد سے سینما ویران ہونے لگے. یہ بھی کہا گیا کہ اگر بھارتیوں کو ہمارے فنکار نہیں چاہیے تو ہم بھی بالی ووڈ کے بغیر مر نہیں جائیں گے. ایران اور ترکی سے فلمیں امپورٹ کریں گے, ویسے بھی پاکستانی ٹرکش ڈراموں کے دیوانے ہیں. مگر اندر سے سب کو پتا تھا کہ یہ سب ہونے والا نہیں, اور اگر جلد ہی بھارتی فلموں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تو اتنی مشکل سے ابھرنے والا پاکستانی سینما پھر بیٹھنا شروع ہو جائے گا. لاہور اور کراچی میں اتنی فیچر فلمیں بہرحال نہیں بنتی جن سے سال بھر کے لیے سینما کا پیٹ بھر سکے. 70% ریوینیو بھارتی فلموں سے ہی آتا ہے. مگر پاکستانی یہ بھی جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں اگر آج ڈنڈا دکھائے بغیر ریفرنڈم کروا لیا جائے تو کرن جوہر, مہیش بھٹ, راہول اگروال, اوم پوری, عامر خان اور شاہ رخ خان سمیت 70% پروڈیوسر, ڈائریکٹر اور ایکٹر اس کے حق میں ووٹ دیں گے کہ فلموں کی تجارت اور اندھی دیش بھکتی کے سوال کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنا ہی عقل مندی ہے. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ بالی ووڈ فلموں کا کوئی پاکستانی رسیا ریکھا اور انوشکا کا دیوانہ ہونے کی وجہ سے بھارت کے بھی گن گاتا پھرے, یا فواد خان اور ماہرہ خان کا کوئی گوالیاری فین پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا پھرے. یہ راز ڈنڈے کے زور پہ بات منوانے والے بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز پہ روک لگانے سے روک نہیں لگ سکتا. ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ بال کاٹنے سے مردے کا وزن ہلکا نہیں ہوتا. مجھے بالکل بھی آشچرے نہ ہوگا اگر کوئی یہ کہے کہ حافظ سعید اجے دیوگن کے فین ہیں اور راج ٹھاکرے یوٹیوب پہ پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں. مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضیاء الحق شتروگھن سنہا کے بھی دوست تھے اور ایٹم بم بھی بنا رہے تھے. 2 دن پہلے پاکستان کے ایک فلم ڈسٹریبیوٹر عادل مانڈوی والا نے اچھی بات کہی کہ ہم بھارتی فلموں پر سے روک ہٹا کے تالی ایک ہاتھ سے بجانے کی کوشش کر تو رہے ہیں مگر دوسرے ہاتھ کے بغیر بہت دیر تک نہیں بجا پائیں گے. مگر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے. بس دعا کریں کہ آج شام سینما کے چوکی دار سے یہ نہ سننا پڑے, صاحب جی کدھر, ہمارے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے.
آپ وسط اللہ خان کی ڈائری bbchindi.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اب مکھیہ سماچار.
بی بی سی سماچار. بھارت نے جونیئر ورلڈ کپ ہاکی کا خطاب جیت لیا ہے
जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर कारक में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की है, जिसमें एक विदेशी पर्यटक समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। सीरिया के अलेप्पो में स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि फंसे हुए लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। यमन के दक्षिणी पोत शहर अदन में हुए आत्मघाती हमले में कम 48 सैनिकों की मौत हो गई है और 84 अन्य घायल हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। अजीत सारथी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।